वदन्दाय कृष्णते कृष्णाय कृष्णते हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंधो जगत्पते गोपेश राधाकांतन सप्तकांतन गौरांगी राधे विशुभानुसुते हा देवी का तो भरगत दयाग्रवाचा जाति निपस्थोरिकंगवते अंगश्यामलिनी छटाभिरहित मंदे कृतंगे वृंदारण्य निवासी नंदिल राधास्कंदमयं प्रपन्ना कृपांबुदीर्जा परदुःख दुःखे सनातनस्तं प्रभु स्वयं रूप दैपायनो विरह सप्तमी आज के दिन अद्वैताचार्य जी का जगत में प्रादुर्भाव हुआ। पहले भक्तों का जगत में आना होता, पहले भक्त लोग जगत में आकर भूमिका को प्रस्तुत करते, इसके बाद में अद्वैताचार्य जो जगत के उपादान कारण है वो आते हैं। उपादानों को सब ठीक ठाक करते हैं, जो प्रकृति ठीक है कि नहीं, और उसके बाद में स्वयं इनके अंशी त्रयोदशी के दिन में नित्यानंद प्रभु जी आएंगे ना, और इसके बाद ही में वो प्रभु स्वयं राधा भाव कांति लेकर के जगत में अवतरित। इस तरह से महाप्रभु जी की लीला आप लोग कुछ कहिएगा। अद्भुत चेष्टा विशिष्ट अद्वैताचार्य की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी उनके इस दुरूह तत्व का सहज ही निरूपण कर सकता है। अद्भुत चेष्टा नहीं, नित्यानंद प्रभु देखने से ही उनका विवाद लग गया।
तो ये कहाँ का अवधूत आज हमारे घर में आकर और चारों तरफ में प्रसाद छीट दिया है। ज्ञान नहीं, न जाने कौन जाति का है, कोई जाति नहीं, हम ब्राह्मण श्रेष्ठ और अन्य इधर उधर प्रसाद रखते हैं, सब शरीरों में भी जानती है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अरे अपराधी, महाप्रसाद के प्रति अपराधी, इसको तुम अन्न मानता और उसको छीटना मानता है, इसको ये नहीं देख सका कि इसे पृथ्वी भी कल्याणमयी बन गई और जिनके जिनके में ये शरीर में ये प्रसाद अन्न लगा उसके स्पर्श से ही एकदम कर गया। इस तरह से दोनों में बीच बीच में झगड़ा लगता है। जब स्नान करने जाते हैं तो जरूर झगड़ा लगता है। नित्यानंद प्रभु जी अल्प वयस्क हैं और वो हैं, और उनसे भी अल्प वयस कौन है, स्वयं महाप्रभु जी सबसे छोटे उम्र में, इसके बाद में नित्यानंद और उसके बाद में ऊपर में और अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य की उम्र सबसे अधिक। तो ये इनके विचार बड़े शुरू हैं। एक पहली महाप्रभु जी के पास में भेज बाजारे ना बिकाए चाहो, आउल कहे बाउल के परी हो जाए। आउल कह रहा है एक पागल दूसरे पागल को कह रहा है, और संदेश देने वाला भी पागल है, संदेश जो जिससे द्वारा जो भेज रहे हैं वो भी पागल। एक बाबू हमें बाबू हम मैंने अद्वैता चाहिए, और एक बाउल के परी हो जाए, एक बल मैंने महाप्रभु बाजारे ना बिकाए जाओ। अब बाजार में चावल की बिक्री नहीं है, दुकान की जरूरत नहीं है, दुकान उठा लेने की जरूरत क्योंकि बाजार में बिकती नहीं, दुकान नहीं है चावल। ये तर्जा किसी के समझ में नहीं आया, महाप्रभु जी कुछ उदासीन होते, केवल स्वरूप दामोदर जी कुछ उसका भाव समझते और कोई नहीं समझ। ऐसे शुरू होते एक पागल मैंने कृष्ण प्रेम का पागल, और दूसरा जो कृष्ण का प्रेम से जगत को पागल बनाने आया है वो मूल पागल, और अद्वैताचार्य एक पागल संदेश भेज रहे हैं, पागलपन का संदेश। बाजार में चावल की जरूरत नहीं, मैंने प्रेम की अब जरूरत नहीं, प्रेम से सब जिसको जिसको देना था वो काम पूरा हो गया, इसलिए अब दुकान हाथ उठा लिया गया, मैंने अपने अवतार को अब समझा। तो किसी के समझ में नहीं आया क्यों स्वरूप दामोदर जी मुझे। इस तरह से उनका अद्भुत चेष्टा, गीता का अर्थ भक्ति पद बखानते थे और कोई नहीं बखानता, गीता का अर्थ विशते तदनंतरम अद्वैतवादी इसका अर्थ लगाते हैं कि वो भगवान में जीव मिल जाता है, ब्रह्म में मिलकर के एक विशदे तद अनंत अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए, और उसे जो पृथक जीव मालूम होता है अभ्यास करते 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 जगत झूठा है, और अंत में उनमें विशदे तद। इसकी व्याख्या अद्वैताचार्य सबसे पहले उन्होंने किया है, सततम कीर्तयन को उसके पहले का है, और वो क्या है हमारा वो हरण अपने करता है योग से बाम है अनन्य चिंतन मन दे जना पद पास और लगते भक्ति पराम, अंत में भक्ति लाभ करता है। कौन भक्ति पराम, इन चीजों के माध्यम से विशदे तदनंतरम भक्ति में प्रवेश करता है। विषदेह भगवान में, ब्रह्म में, ज्योति में ज्योति मिल जाती है, ऐसा नहीं। विषदेह उनके धाम में प्रवेश करके उनकी सेवा में प्रवेश करता है, इसका हुआ। किंतु वो लोग उल्टा पुल्टा प्राप्त कर देते हैं, इसलिए कहते हैं कि। और यदि अद्वैताचार्य कुछ दिनों के बाद शांतिपुर में जाकर विषदे तदनंतरम का यही अर्थ बतलाया, हम ब्रह्मास्मि हैं, ब्रह्म हूँ और जीव ब्रह्म में। तो महाप्रभु गए और ताबड़ तो मुक्के से, थप्पड़ से, जैसे बना दाढ़ी नोच नाच कर और उन्हें पीट करके दुरुस्त कर दिया। सीता देवी जी ने आकर के उनकी रक्षा कर। अद्भुत क्यों, और मार खा करके बड़े प्रसन्न होकर के नृत्य करने, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं और मेरी ये मुझे प्रणाम करते थे और मेरी उपासना करते थे गुरु के रूप में, माधवेंद्रपुरी के पास के शिष्य ये हैं अद्वैताचार्य। महाप्रभु जी सोचते थे जी हमारे गुरु जी के ये शिष्य हैं, हमारे ये गुरु
परम गुरु के शिष्य
हमारे गुरु हैं, इसलिए इनको प्रणाम करना, इनका भक्ति करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए महाप्रभु जी करते थे। और ये देखते थे कि हमारे अंशी के मूल ये शनि महाप्रभु हमारे ये आराध्य, इसलिए ये अद्वैताचार्य की उनका भजन करना चाहते थे, सेवा करना चाहते। उस सेवा से हटाने के लिए ही अद्वैताचार्य ने निर्विशेष बात गीता का व्याख्या किया। महाप्रभु जी बिगड़ कर गुंजन मारने लगे, जब मारने लगे आज मेरा जीवन सार्थक हो, यही मैं चाहता था कि हमारी आप सेवा करें, अब आप पढ़े हैं कि मैं बड़ा हूँ, अब कौन हूँ। महाप्रभु लज्जित हो गए और शशि देवी को एक बार कह दिया कि तुम्हें प्रेम नहीं देंगे, हमारे भक्त का तुमने निरादर किया, क्या निरादर, वैष्णव अपराध हो गया है तुम्हारा। तुमने कहा जैसे अद्वैत नहीं, ये तो द्वैत है, तो बात तो अच्छी ही थी, बात बुरी क्या थी, द्वैत अच्छा है ना अद्वैत अच्छा है, द्वैत ही तो अच्छा है, सिव्य सेवक का भाव है। उन्हें तू अद्वैत नहीं है, महाप्रभु जी ने कहा जैसे ये माता जी का ये कहना है कि पुत्र से, माता से पुत्र को अलग करता है, पिता से पुत्र को अलग कर देता है, भाई से भाई को अलग कर देता है, ये अद्वैताचार्य भक्ति का काम कर देता है। और ऐसा ही कर देता है जैसे कि संसार से उसका संबंध काट देता है। मैया का मानव प्राकृतिक है नहीं, वो तो कृष्ण के प्रति, महाप्रभु जी के प्रति उनका अनुराग है, इसलिए वो कह सकते हैं, इससे बढ़कर तो अच्छा क्या होगा। किंतु संसार के लिए यदि कोई ऐसा उपदेश दे करके जो जीव कोटि जन्मों से भगवान को भूले हैं उनके साथ में संबंध स्थापन करके उनके भजन का उपदेश देता है और संसार की श्रृंखला को काट देता है, इससे बढ़कर चौथा क्या हो सकता। उन्होंने कहा कि विश्वरूप को हमसे अलग कर दिया, ये इसको भी शिक्षा देकर के हमसे अलग कर देगा, ये भी कहीं चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, इसलिए और वही तो अगर फिर एक में मिला हुआ ये संसार में देखना चाहता, ये द्वैत चाहता। महाप्रभु जी ने कहा जारी हमारे भक्त को तुम ऐसा कहती हो क्या, तुमको प्रेम नहीं दे। तो मैया को कहा, मैया करके खड़ी हो, सब लोगों ने कहा जिसको अजय अद्वैताचार्य के चरणों में अपराध, तो वो चली गई और अद्वैताचार्य से क्षमा मांगा, वो उनके चरणों में गिर गए, आप जगत जन नहीं, आपका कभी अपराध नहीं। फिर उन्होंने कहा ऐसे तो ठीक है, यदि कोई कहता है जो अपराध है तो मैं क्षमा कर देता। जैसे किसी ने कहा जो कृष्णचंद्र का बुखार उतर जाएगा चरणों की धूली से, तो वो क्यों उठा देंगे, ले लो। ऐसे ही उन्होंने कहा यदि हमारे प्रति अपराध है तो मैं तो लाख मुख से कहूंगा कि नहीं अपराध है, अच्छा बात है। आकर के महाप्रभु फिर ऐसे ही अद्भुत चेष्टा है। और क्या चेष्टा? कृष्णचंद्र जी ग्लोक वृंदावन में जाने पर कृष्ण लीला समाप्त कर रहे हैं, सोच रहे हैं भाई हमारी तीन इच्छाएं पूर्ण रही, वो राधा जी की प्रणय महिमा, कृष्ण का माधुर्य और आस्वादन करने पर उसका सुख, ये तीन चीज तो बिना राधिका जी के भाव के और अंगों की शांति के ये नहीं संभव। तो ये हमने तो आस्वादन किया नहीं, मैंने बात्सल्य रस, सखरस, माधुर्य रस सभी रसों का आस्वादन किया, किंतु राधा जी को हमें देखने से कैसा सुख होता है और हमारे पति उनका जो प्रणय है वो कैसा है, ये तो मैं सब कुछ अनुभव नहीं कर सका, ये अनुभव कर नहीं सकता। इसके लिए सोचे जैसे मुझे फिर ब्रज में जाना पड़ा, मैं जगत में जाकर के पढ़ता हूँ। उसमें युग धर्म भी उपस्थित था, कली काल आ गया। तो कली काल में कली की आयु 4,32,000 वर्ष, साधारण रूप में भगवान का अवतार किसी युग के अंत में ही होता है, जैसे त्रेता युग के अंत में राम आए, द्वापर के अंत में ही कृष्ण आए, ऐसे युगावतार युग का जब प्रयोजन होता है अंतिम चरम अवस्था पर वो श्रृंखलता बढ़ जाती है, धर्म संस्थापनार्थाय तब वो आते हैं। तो इसलिए वो सोच रहे थे ये अभी और देखो, और पाप बढ़ जाए और कुछ श्रृंखलता बढ़ जाए, वही तो दानों सब ये सब कर रहे हैं कर लें, तो मैं कब अवतरित हूँ इस पर विचार कर रही हूँ। आना किंतु था जो निश्चित चलेंगे, कारण क्या, दो मैंने चार युवाओं को युग धर्म प्रचार करना, अतः पुनर्का प्रचार, जीवों में प्रेम दान करना, आस्वादन एक, प्रेम दान एक, तो दो मुख्य कारण और दो बहु कारण है महाप्रभु। मुख्य कारण, मुख्य का मुख्यतम प्रेम आस्वादन करना राधा, और दूसरा गौण कारण अनर्पित चर चिराग करुणिया बतलना, अनर्पित चर प्रेम देना, वो भी प्रेम कैसा, उन्नत उज्ज्वल रस देना। उन्नत उज्ज्वल रस किसको कहते हैं, गोपियों के पार्थिव भाव का नाम ही उन्नत उज्ज्वल रस, इसको देने के लिए। तो राधा जी का तो यही है भाव, इसको देने के लिए है नहीं, उन्नत उज्ज्वल पार्थिव रस भी दो प्रकार का है, एक तो राधा जी का भाव जो देने लायक है और दूसरा पांच सखियों में से जो दो सखियां नित्य सखी और प्रिय प्राण सखी है, इनका जो राधा जी की सेवा और उनके अनुगत्य में कृष्ण की सेवा, ये चीज उन्नत उज्ज्वल है किंतु ये दिया जा सकता है, यही जीव मात्र का स्वरूप है, इसलिए इसको देने के लिए, जीवन के स्वरूप को देने के लिए और राधा जी के स्वरूपगत प्रेम का आस्वादन करने के लिए, और जदा जदा ही अधर्मस्य ग्लानिः धर्मस्य ग्लानिः भवति, ये दूसरा गौण कार्य, और इसमें युग धर्म का नाम संकीर्तन का प्रचार करना ये मुख्य कार्य गौण में, ये चार कार्य थे। महाप्रभु जी कृष्ण विचार कर रहे हैं मुझे कब चलना चाहिए, युग धर्म के लिए तो अंत समय ठीक है, नाम प्रचार करने के लिए प्रारंभ से नाम का प्रचार किया जाए तो युग का प्रभाव वो युगों पर कम हो जाएगा, क्या ये आस्वादन कब करना चाहिए ये विचार कर रहे हैं। इतने में एक और कारण, अद्वैचार त्याग में देखा जो भक्ति जगत से लुप्त हो अभी प्रथम चरण में ही न जाने पीछे क्या हो। महाविष्णु के रूप में विचार कर रहे हैं कहाँ अवतार के पहले कहाँ रहते हैं तृणाभिशाई में शयन करते हैं वहाँ विचार कर रहे हैं वीरजा में यहाँ पर भी सात्विक राजसिक और तामसिक प्रकृति का कोई भी कुछ नहीं है साम्य अवस्था है वहाँ पर ये विचार कर रहे हैं। ये प्रभु कब न जाने आएंगे और इधर जगत के उपादान कारण है जगत का दो कारण एक उपादान और एक निमित्त को किसको कहते हैं पंडित जी जरा व्याख्या कीजिए तो
इस प्रकार घट है घट में जो घट बनती है उसमें जो
घट बनती है
जो घट बनते हैं तो उसमें सबसे पहले जो पहले भी मुख्य कारण है उसे उपादान कारण कहते हैं और दोनों कारण को निमित्त कारण कहते हैं। मुख्य कारण जिस प्रकार जैसे
उल्टा हो गया
मुख्य कारण है जिस प्रकार माटी है जो माटी आगे भी था अभी भी है बाद में भी रहेगा माटी न रहने से जो कुमार था कुमार घट नहीं बना पाएगा।
तो ये बोला था
पालन पालन करके जीवस्तु द्वारा जीवस्तु का समृद्ध हो जीवस्तु तैयारी करा हाँ उत्पादन का
हिंदी बल
और निमित्त कारण निमित्तकरण जीवस्तु कोटि से जीवस्तु तैयारी होता है
दोनों में मुख्य कौन है
दोनों में उपादान मुख्य
निमित्त कारण के
वो करा निमित्त मुख्य उपादान। भाई तुम बीच में कोई मीमांसा करो तो कोई मीमांसा नहीं है तुम्हारा तुम्हें बोला था वो करा है जैसे वो निमित्त मुख्य और ये कहते हैं उपादान पंडित जी सब शास्त्र देखे होंगे कपिल कपिल का
जगत के तरफ से देखे थे तो
ये ऊपर से भी देख रहे हैं
ठंडा हो निमित्त कारण कुम्हार न रहे तो बना नहीं पाएंगे कुम्हारी नहीं यदि इस तरह से देखे तो वो उससे मुख्य कारण कहा जाएगा तो
युक्ति से नहीं नहीं मत कहिए ये अहंकार
नहीं जैसे
युक्ति से बोलिए
यदि कुम्हार का क्या प्रयोजन है कुम्हार का तो जरूरत नहीं है जरूरत घट का तो घट का जब जरूरत है कुमार होने से क्या घट का काम चल जाएगा नहीं चलेगा मनुष्य को जरूरत है घट
अंजलि से पानी पिला दे
नहीं जब अंजलि से जो पानी
घट मान गया कि मिट्टी है मिट्टी अपने कोई काम करेगा
नहीं मिट्टी काम नहीं
और पानी पिलाने का काम घट का है
हाथ में से कितना होगा
जहाँ पर मुख नहीं
है मुख
नहीं है
मतलब मुख काम नहीं कर सकता है इतने दूर से कहाँ पानी मान लीजिए एक दिन दूर में है पानी तो यहाँ लाने में कितना ऐसे पी सकते हैं
घट खाली है यहाँ और जब गंगा से पानी लाना है घट अपने लाएगा
और वो दोनों तरफ से विशेष समय के अनुसार वो मुख्य वो गौण है और
अब इसे देखो समझो निमित्त कारण और उपादान निमित्त विष्णु है और कारण विष्णु उपादान महाविष्णु जो है प्रणाब्दशाही विष्णु स्वयं स्वरूप वो निमित्त कारण और उनके जो अंश हैं अद्वैताचार्य वो
उपादान
तब दोनों में कौन मुख्य हुआ
और वो सब देखो कारण
सब तरह से वैसे एक आदमी को मैंने कहा तो ये आदमी ठीक नहीं ये बड़ा बदमाश चोर चोटा लफंगा है इसको यहाँ से गर्दन पकड़ करके उसको बाहर कर दो कभी फरका देना कभी नहीं खा तुम जानता नहीं जैसे वो कैसा हमारे कहने से उसको तुमने बाहर कर दिया अब उसको बाहर करने का कारण कौन है मैं कह करके घर में चला गया ना मैं कह करके चला गया और तुमने क्या किया जिस हजार लोगों में वो बैठा था सब लोग देख रहे हैं कि ये उसका गला पकड़ करके गले में हाथ दे करके यहाँ से बाहर करता है तुम हुआ उपादान कारण, मैं निमित्त कारण, अब असल कारण कौन है उसको बाहर कर दो। ऐसे ही सब निमित्त कारण चेतन होता है, निमित्त प्रकृति मैंने भगवान की इच्छा वहां पर निमित्त कर्ण आप दिशा, और महत्तत्व जो है वो कारण है उपादान, वो प्रकृति है जिसको प्रसव करती है। निमित्त कारण के रूप में कर्णाधिशायी विष्णु स्वयं रूप में उसके तरफ में इच्छा करते हैं, ये जगत दृष्टि। और उपादान कारण जो उपादान प्रकृति है, जड़ है, अचेतन है, वो चेतन है कि इच्छा को है। और ये उपकरण महत्तत्व जो है ये है जड़, उस जड़ा प्रकृति में अद्वैताचार्य जी इच्छा करते हैं। इससे अब वो दोनों मिलकर के निमित्त और उपादान जगत की असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड होता है। यदि प्रभु की इच्छा ही नहीं होती तो फिर क्या होता, सब किसी भी कार्य में कारण जो होता है इच्छा होती। इसलिए अद्वैताचार्य जो उपादान कारण है वो निमित्त कारण के अंश है, इसलिए निमित्त कारण उनकी इच्छा है, इसलिए वो निमित्त आया समझता है। इसलिए अद्वैताचार्य महाविष्णु जो है कारणाधिशायी विष्णु उनके ये अंश, इसका ये सब में विवरण सब ये दिया गया है। कहते हैं अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, यार महिमा नहीं जीवर गोचर, महाविष्णु सृष्टि कर जगत आदि कार्य, महाविष्णु माने कर्मदोषाई विष्णु जगत इत्यादि कार्य की सृष्टि करते हैं, तहां अवतार साक्षात उनके ये अवतार हो गए ना। इसलिए विष्णु की जो इच्छा है वही निमित्त कारण है महाविष्णु, और उनकी इच्छा के अधीन अद्वैताचार्य की जो इच्छा है ये गौता है, ये भी महाविष्णु है, वो भी महाविष्णु है, किंतु वो महाविष्णु के ये अंश है। यहाँ पर उपादान क्या है, महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से पांच प्रकार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श तन्मात्रा, फिर एकादश इंद्रिय, और फिर इनके संयोग से पंचभूत स्थूल, स्थूल पंचभूत पीछे होता है, तो ये कितना हुआ, 16 हुआ ना, 16 कॉर्ड। और इसके पंचभूतों रूप रस शब्द गंध स्पर्श पंच, तो ये पांच और वो 11, 16 और 5 21 पंच हो, और मन मंत्र हो गया, बुद्धि और अहंकार जो होती है हुआ, अहंकार तो उसमें हाँ अहंकार 4, 24 प्रकृति और सब कुछ आत्मा और पानी, ये 28 तत्व हैं, जिसमें दो को छोड़ करके बाकी को सांख्य लेते हैं और परमाणु वाले लेते हैं, माने नहीं आई भगवान को और जीवात्मा को उसमें नहीं लेते। पुरुष जे पुरुष सृष्टि करें माया, पुरुष सृष्टि स्थिति करण माया, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करण माया, यह अद्वैताचार्य का इच्छा है, अनंत मुक्ति करण प्रकाश, एक एक मुक्ति करण ब्रह्मांड प्रकाश प्रवेश, से पुरुष अंश अद्वैत नहीं कुछ भी, उनकी ये अंश है मैंने महाविष्णु के ये अंश। सहाय करण सार लय्या प्रधान कोटि ब्रह्मांड करण इच्छा निर्माण, माया जैसे द्वि अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान, इसी को अभी अभी तक एक उपादान कारण और एक मुक्त कारण, एक उपादान प्रभु, एक निमाता, एक निमित्त। महाविष्णु प्रणाप्तिशाही विष्णु स्वयं निमित्त प्रभु, निमित्त ईश्वर। और ये कोई कोई कहते हैं ये प्रकृति से स्वयं सृष्टि होती है। स्वयं सृष्टि होती है। मैं कैसे उदाहरण दिए, एक तृण है, हरे हरे तृण है और उसको गाय खाती है और गाय खाने से उसको दूध करता है, तो गाय ने घास खाया और अपने आप दूध कर दिया, जिसमें दूसरे लोगों की जरूरत क्या है। इसी तरह से प्रकृति अपने आप सब कुछ करती है। तो किसी भोले भाले वैष्णव ने कहा, पहले वाला जो दूसरी है वो पंडित जी कि भाई घास खाने से ही तो दूध तक जाता है। तो वैष्णव जो थे सन भोले भाले, जरा पढ़े लिखे कौन थे, भाई बैल भी तो वही घास खाता है, उसको क्यों नहीं दूध। तो पंडित जी थोड़ा सा शिक्षक से कर रहे, सोचने लगे। ये सब जबकि याद रखें, नहीं तो तुम लोग बोला भला समझ करके ठग लेंगे। ये शांत वाले कह रहे जैसे भाई वैसा होता है अपने आप हो जाए, भाई बैल को क्यों नहीं उतरता, वो भी तो अधिक घास खा ले। फिर उन्होंने कहा ये भाई जैसे उपादान कारण है और बना है, इसमें ईट और ये सब दिखाई पड़ता है। तो वैष्णव ने कहा कि भाई यदि ईट ही से घर होता और मसाले से और पानी और सीमेंट से, तो 100,000 बोरी सीमेंट यहाँ रखता और 10 करोड़ ईट यहाँ रख देता और पानी यहाँ पर 1 करोड़ भर करके रख देता हूँ और लकड़ी और पत्थर भी यहाँ पर रख देता, घर बन जाए, घर बने। उपादान रहने से ही नहीं होगा, इसलिए निमित्त मुख है प्रभु की इच्छा। उन्होंने इच्छा की, कागज और कलम सब कुछ है किंतु अपने से आप नहीं मिलते, इसलिए जड़ उपादान जो प्रकृति है उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता जब तक कि प्रभु की इच्छा न हो। इसलिए अद्वैताचार्य भी उपादान के मुख्य प्रेरक और निमित्त, इसलिए प्रभु को कहा गया कि उन्हीं की इच्छा से ये इच्छा, इसलिए अपने आप कोई भी कार्य नहीं होता जगत का, इसलिए प्रकृति बात जगत का है ये जबरदस्त। फिर वो कहते हैं एक पंखु है प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मैंने जड़ा है और पुरुष चेतन, ये दोनों मिलकर के सृष्टि होती है। प्रकृति निष्क्रिय है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, और पुरुष जो है वो निष्क्रिय एकदम, कुछ करता नहीं, किंतु दोनों जब मिल जाते हैं तो अपने आप ये जगत की अपने आप सृष्टि हो जाती है, सृष्टि करने वाला कोई नहीं है, जैसे आजकल वो साम्यवाद वाले का बंगाल का चौपट कर दिया, बंगाल को चौपट कर दिया और सभी विश्व। अब वो लोग धीरे 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 सोच रहे हैं और इधर में आ रहे हैं कुछ आस्तिकता की तरह। तो कहते हैं जैसे इसमें भगवान की क्या जरूरत है झूठ मुख को मानने, वो अपने आप प्रकृति ऐसी है जिससे कि ये नहीं जाती। कहते हैं जैसे पंगु, पंगु माने इसका पैर था लंगड़ा और एक अंधा है, दोनों मिल गए, उनको जाना था कहीं मथुरा जाना था। तो लंगड़ा ने कहा कि हमको अपने कंधे पर चढ़ा लो, मैं आँख से देख करके तुमको बाएं दाहिना सामने रास्ता बताऊं, अब तुम्हारा पैर है उधर में चलना, बस दोनों पहुंच जाएंगे लंगड़ा और। अब यदि दोनों नहीं मिलेंगे तो हम भी नहीं जा सकेंगे, तुम भी नहीं जा सकोगे। दोनों मिल गए, हम मिल करके लंगड़ा को चढ़ा लिया अंधे ने अपने कंधे पर और अपने गंतव्य उठा लिया। कर रहे हैं युक्ति सब हम लोगों की तरफ से, यहाँ लंगड़ा भी चेतन है और अंधा भी चेतन है, दोनों चेतन है इसलिए दोनों के चेतन होने से काम होता है। हम तो एक ही को चेतन मान रहे थे प्रभु को केवल और प्रकृति को जड़ा, तुम तो दोनों को ही चेतन मान लिए तो और अच्छा हो गया।
अच्छा उसका ही मत खराब
हो गया ना,
ठीक है उसका ही मत खराब हो गया, हाँ दोनों ही चेतन हो गया।
हाँ ये तो दोनों ही चेतन है, इसलिए बिना चेतन का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है जड़ा प्रकृति के।
बहुत बढ़िया, ये तो उनका ही खंडन हो गया,
वो तो अपने मुख से अपने ही खंडन
हो गया, अपने अभी खंडन हो गया।
पंडित लोगों की ऐसे ही होता है,
ठीक है।
अरे निया
बात
दो, एक प्रकाश ठाकुर से देखा हो गए, आर एक चिट्ठी में मैंने आर एक कर दी रहा देते तो नहीं दिए थे में खीरे को मैं खांगे खाने से। अरे
देखो
इस तरह से ये सब युक्ति सरस युक्तियाँ ये मत समझना कि इससे भक्ति का संबंध नहीं है। शुष्क में भी वैष्णव ने बड़ी सुंदर सुंदर सब युक्ति निकाल करके समझाने की चेष्टा। इस तरह से इन सब तत्वों को जगत की सृष्टि के मूल कारण कृष्ण हैं, उनकी इच्छा हुई जगत को तो अपने आप संकर्षण बन गए, दो प्रकार के संकर्षण बन गए, एक मूल संकर्षण और एक महासंकर्षण। महासंकर्षण से फिर एक और कारणाधिशायी भी और उन्हीं के अंश वहीं पर एक अद्वैताचार्य के रूप में महाविष्णु के रूप में उपादान कारण उसके रूप में। क्यों लोग कहते हैं कि उपादान कारण भगवान से अलग है, जगत के उपादान कारण भगवान नहीं है ना, निमित्त कारण हो सकते हैं, उपादान कारण नहीं। जब कृष्ण के अतिरिक्त और कोई जगत में वस्तु ही नहीं है तो ये जगत कहाँ से आया, ये महत्त्व आया कहाँ से, महत्त्व कहाँ से आया, ये महत्त्व भी प्रभु की इच्छा से ही, ये महत्व कभी कोई पृथक चीज नहीं है, ये कर्णाधिशायी जी सृजन निष्ठा का, ये है क्या महत्व, स्वयं प्रकृति है। जो जीव भगवान को भूलते हैं उनको दंड देने के लिए ही प्रभु की इच्छा से ही एक ये प्रकटित है जो जीव के स्वरूप को आकृत करता है और उनको दंड देता है। ये दंड देना भी जीव समझता है कि बड़ा सुखकर है, किंतु है दंड। जैसे पागल नंगा होकर के नाच रहा हो, लोग मारते हो भी तो कट के आए सब है, बिना खाए पिए चारों तरफ में घूम रहा है, हम तो राजा हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, ऐसे वो अपने को सुखी समझता है। ऐसे ही हमारी दशा है, हम प्रत्येक व्यक्ति इसी स्थिति में सुखी हैं, किंतु हम सुखी नहीं हैं। इस तरह से इस प्रकृति के भी मूल वो प्रभु अद्वैताचार्य उपादान कारण, इसलिए उपादान की जो आई है ये कहाँ से आए, प्रकृति को बनाया बतलाया अजागल स्तन, बकरी का स्तन, बकरी के चार स्तन होते हैं जिससे दूध आता है, दो दो, और एक होता है किसी किसी बड़ी बकरी का यहाँ पर राम छागल का यहाँ, तो यहाँ वाले में दूध नहीं निकलता, वो देखने के लिए है। ऐसे ही प्रकृति जो जगत का सृजन करने वाली कहलाती है, उन अंधो व्यक्तियों के लिए जो जानते नहीं है, प्रकृति को ऐसा ही कारण, उसे दूध जैसे नहीं निकलता, प्रकृति से जगत नहीं निकल सकता है, कोई चेतन वस्तु की भूल में जरूरत है, बिना चेतन वस्तु की इच्छा के लिए सब जगत
ठंडा है।
इसलिए जगत का मूल कारण ये प्रभु है। ये तब वहां पर जो विचार कर रहे थे अद्वैताचार्य, ये जगत नास्तिक हो गया और क्रमश भगवान को भूल रहा है, क्या किया जाए, सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा ये संभव पर यह काज बहुत सुंदर है, उनको और भक्तों को भक्ति पथ पर लाना बड़ा भारी कष्ट है, और बिना शक्ति के वो भगवान की शक्ति के ये काम नहीं होगा। जितने लोग जगत में प्रचार करते हैं, भक्तों के अतिरिक्त जितने भी प्रचारक हैं, वो सब माया के हैं, माया के दूसरे प्रतीक हैं, उल्टा सुलटा जो कुछ प्रचार करते हैं। अभी एक मर गया एक था
रजनीश,
और कितनी एक गुरु कौन उनका लाते हैं, जय गुरुदेव, भगवान के भक्ति से कोई संबंध नहीं, ऐसे ही सबका भगवान से के समस्त संबंध नहीं है, भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे, गीता भागवत का मन माने रूप से जो इच्छा आई रूप से निकल गया हुआ प्रचार, बल्कि सनातन धर्मियों को जो शुद्ध भक्त है उनकी उपेक्षा कर, और लोग वही सब चाहते हैं, वही सुनना चाहते हैं, ये सब सुनेंगे। उन्होंने सोचा जैसे ये मायावादी रावण को हराना परास्त करना ये बड़ी भारी बात नहीं, कंस को भी मारना बड़ी भारी बात नहीं, इसको विष्णु के अवतार के द्वारा ही ये काम हो सकता है ना, किंतु इन विचारों को बदल देना ये बड़ा भारी बात है। और वो स्वयं यदि कृष्ण जगत में आए तो ये संभव, हम लोगों के द्वारा माँ विष्णु के द्वारा भी नहीं होगा, किसी अंश के द्वारा नहीं होगा, अवतार के द्वारा नहीं, ये काम किसी के द्वारा, ऐसा सोच करके पहले अवतरित सप्तमी को महाप्रभु से कम तो 60-70 वर्ष पड़े थे, करीब 65 साल के जब थे तो महाप्रभु जी का जन्म, और द्वैताचार्य महाप्रभु से करीब करीब 4-5 वर्ष ऐसे ही कुछ बड़े
नित्यानंद
से बड़े, महाप्रभु के जितने भी परिकर थे सब महाप्रभु से बड़े थे उम्र करीब करीब, महाप्रभु पीछे पहले भक्तों का अवतार करा है, पीछे से अपने साथ अद्वैताचार्य पहले अवतर जगत की स्थिति देखकर भक्ति का प्रचार कर, नाम था कमलाक्ष, कमलाक्षी जी से बड़े सुंदर थे, कमल जैसी नृत्य, इसलिए कमलाक्षी। और पूर्व बंग में उनका कौन सा सिंहट न कहा, वहाँ पर जन्म।